अब आगे की जो आयात हैं इनमें वो 10 कमैंडमेंट्स हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, और हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म रखे हैं। इनको अगर गिने तो ये 26 के करीब अहकामात बनते हैं, और आज हम इंशाअल्लाह ताला दो अहकामात पढ़ेंगे इनमें से, देखते हैं इनको।
वकदा रब्बुका, और फैसला कर दिया है तेरे रब ने, फैसला कर चुका है तेरा रब, हो गया फैसला, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। क्या अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, नहीं तुम इबादत करो मगर उसी की। ये इबादत का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है कि सिर्फ इबादत होगी तो उसकी और किसी की नहीं, मैं उसकी तरफ से तय हो गया मामला। और इबादत क्या है, इबादत में सजदा भी आ जाता है, दुआ भी आ जाते हैं, सदका और खैरात भी आ जाता है, नजर व नियाज भी आ जाती, कि सब सिर्फ उसके लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी। और इबादत के अंदर खुद को इंतहाई जलील कर देना, अल खुदू व तजल्लुल, अपने आप को बिल्कुल गिरा देना, बिछा देना मोहब्बत के साथ, ये होती है इबादत। यानी कोई इसलिए नहीं खुद को झुकाता कि कोई मुसीबत है, कोई किसी ने सर पे डंडा रखा हुआ, नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का सबसे पहले हुक्म दिया, और याहू सिर्फ उसकी, सिर्फ उसकी में कोई और शामिल नहीं हो सकता। फिर अब ये नोट कर लीजिएगा कि ये उन लोगों की सिफात है जो आखरत में कामयाब होंगे, जो आखरत के चाहने वाले हैं, वो कैसी जिंदगी गुजारे, सबसे पहले अल्लाह की इबादत। और अल्लाह की इबादत में अपनी फ्री विल के साथ अल्लाह के आगे झुक जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला की खुशी, उसकी रजा, हर एक की खुशी और रजा से ऊपर, और अल्लाह की नाराजगी का खौफ, हर एक की नाराजगी का खौफ से ज्यादा, और अल्लाह के सिवा कोई और यह हक नहीं रखता हो उसकी जिंदगी में कि उसकी खुशी को, रजा को, नाराजी को पहले दर्जे पे ले आए। सबसे पहले दर्जे पे अल्लाह ताला की खुशी और रजा, और उसी की नाराजगी का खौफ होना चाहिए। जहां पे इंसान किसी और की खुशी, किसी और का डर या किसी और की रजा को मुकद्दम कर देगा, प्रायोरिटी दे देगा अल्लाह के ऊपर, वहीं पे तो शिर्क शुरू हो जाता है। यही तो शिर्क है, अल्लाह की खुशी से बढ़ के किसी को और की खुशी आपको अजीज हो जाए। और दूसरी बात, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदेन के साथ एहसान करो। एहसान यानी एहसान किस वक्त में, एक तो एहसान आम ही है कि सारी जिंदगी उनके साथ अच्छा एहसान करना है, मगर खास ताकीद की गई है यहाँ पे, और वो ताकीद क्या है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब वो, अगर वो पहुंच जाए तेरे पास बुढ़ापे को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक उनमें से या दोनों उनमें से, तो अब क्या करना है तुमने, तीन बातें बताई गई। चाहे एक बात आपने नोट की है, अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद किसका हक सबसे पहला बयान फरमाया और जिसका हुक्म दे दिया, वो है वालदेन। और वालदेन भी उस एज में, जिस वक्त के वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, उस वक्त उनके हक को और ज्यादा बताया गया कि अब उनके साथ बिल्कुल एहसान का रवैया, और उनके बारे में ताकीदें की गई कि उनके साथ कैसा रवैया रखना है तुम्हें, इसलिए कि अल्लाह ताला खालिक है, वो इंसान को पैदा करने वाला है, मगर जो सबब बनते हैं इंसान के दुनिया में आने का वो है उसके वालदैन। और आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र गुजार नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। तो यहां पे अल्लाह ताला ने इसीलिए अपने बाद इंसानों में सबसे पहले जिसके हक की बात की है तुम्हारे वालदेन है, और उनके लिए क्या फरमाया कि जब वो बूढ़े हो जाएं, बड़ी उम्र को पहुंच जाएं और तुम्हारी निगहदाश्त में हो, तुम्हारी जेरे किफालत हो, तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास रहते हो। अब तुम्हारे पास रहते हैं तो देखें, अब ये क्यों कहा गया इंदा का, पास तुम्हारे, इसलिए कि देखें जो अब जैसे हम लोग हैं दूर अपने वालदेन से होते हैं, तो वो 2-4 मिनट की कॉल कर लेना या 2-4 मिनट की उनके साथ बातचीत कर लेना हफ्ते में एक दफा या रोज भी, या साल बाद जाके उनके साथ 2 हफ्ते गुजार लेना, ये तो आसान है। मगर जिसके पास रहते हैं, जिनके पास उनका वक्त गुजरता है, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है डील करना। वो तो आसान ही है, अब आप जाहिर है 10 मिनट की कॉल कर रहे हैं तो वो तो आप अच्छी तरह ही बात करेंगे ना। मसला ही तब आता है जबकि वो आपके पास रहने वाले, तभी गिले शिकवे आते हैं, तभी मुश्किलें आती हैं, तभी कई चीजें अनोइंग लगने लगती हैं, क्योंकि इस उम्र में जाहिर है माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, उनकी कई बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती हैं और अकल शऊर खत्म होने लगता है, और उसी तरह की जिदें, उसी तरह की बातें, उस वक्त में पहुंच के तुमने उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे गिननी खानी, उनको बे ना समझ जान के और उनको अकल से आरी समझ के उनके साथ उनको मजाक करना या उनको अकीर जानना या उनसे चिढ़ना, बुरा समझना, बुरा लगना या डांटना, ये नहीं करना। डील करना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, इसलिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब चीजें हैं, इसी वजह से खास तौर पे बुढ़ापे की बात की गई। देखें जब इंसान जवान होता है तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं होती बच्चों की कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है और डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, और फिर जब जवान होता है, वालदेन जवान होते हैं तो वो काफी हद तक सेन बातें कर रहे होते हैं, बड़ी मतलब अकल वाली बात करते हैं, लेकिन जब बूढ़े होते जाते हैं तो जाहिर है अकल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, रजील उम्र की तरफ जाते हैं। वो तो यही सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दूसरा बंदा जान रहा होता है कि अब उनकी समझ उस लेवल की नहीं रही है और वो ऐसी बातें करने लगे हैं जो कि सही नहीं है, और बाज दफा अपने लिए उनके लिए भी नहीं सही होती, उसमें जिद करने लगते हैं। तो ऐसे में तुमने क्या करना है जब तुम्हारे पास रहते हुए ऐसा होगा। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो ना तुम कहना उन दोनों को उफ। उफ क्या है? उफ का लफ्ज हालांकि कितना छोटा सा लफ्ज है, मगर इसी के अंदर छुपी हुई है दिल की घुटन, कराहत, क्या मसला है, नाराजगी। यानी इंसान बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ भी, उफ वो इस तरह करना, हकारत, नापसंदीदगी और बहुत माइन्यूट सी, इतना भी ना कहना, इसलिए कि उनके दिल पे बहुत ये गरां गुजरेगी, उनका दिल इससे जख्मी हो जाएगा। देखिए बदजुबानी करना, बहसें करना, झगड़े करना, वो तो दूर की बात है, उफ भी नहीं कहनी। अल्लाहू अकबर, कि जरा सा भी ऐसा रवैया नहीं रखना जो कि बदतमीजी का, बदखलाकी का हो। बुरी बातें और लंबी चौड़ी तो दूर की बात है। और अल्लाह ताला ने एक कलिमा बता के, अब जैसे आप हम कहें हमारे पास तो उफ का लफ्ज ही नहीं है, हम हमारे यहां तो कुछ और ही लफ्ज बोले जाते हैं, तो जो भी लफ्ज बोले जाते हैं, मसलन है कि आपके यहाँ ओ गॉड, या ये उसका उफ है, ठीक है। इसी तरह कई जगह पे ऐसे हो जाता है बच्चों का रवैया कि आंखें रोल करने लगते हैं, ऐसे करते हैं, यानी बाप या माँ की बात के जवाब में हूं, इतना सा भी नहीं कहना, कैसे दिल कट जाता होगा उस माँ का, और उसको वो सारी बातें याद आती होंगी कि उसने किस तरह मौत की कश्मकश बर्दाश्त की थी इस बच्चे को पैदा करने के लिए। एक माँ ही जानती है इस तकलीफ को कि मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैंने वो तकलीफ सह के बच्चे की खातिर, और कैसे मैंने इसको पैदा किया, कैसे मैं इसको दूध पिलाया, कैसे मैंने अपना आराम कुर्बान किया। सोई हुई माँ रातों को उठ जाती है, उठते ही बच्चे को मोहब्बत से उठाती है, कहीं उसको गर्मी ना लग रही हो, सर्दी ना लग रही हो, ये ना हो जाए। और वो मोहब्बत करने वाला बाप सारे दिन की थकावट के बाद बच्चे की चीखों पुकार बर्दाश्त करता है, अपनी थकावट भूल जाता है, गधे की तरह सारा दिन काम करता है, मेरे बच्चे की फ्यूचर अच्छा हो, उसको ना किसी चीज की तकलीफ हो, उसको हर चीज मुयस्सर हो, उसको हर तरह का आराम मिले। और एक बात बच्चा तोतली जुबान में 100 दफा कहता है ना, 100 दफा ही माँ बाप खुश होते हैं कि आज हमारे बच्चे ने ये लफ्ज कहा। और बच्चा चलने लगता है, माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं भी हल्की हल्की प्रवास करने लगी, उड़ने लग गई, और बातें करने लगता तो उसकी बातें हर जगह बताती फिरती। बाप ठंडी छाऊं की तरह होता है। तो अल्लाह ताला इंसान को फरमाता है, तुमने ऐसी हस्तियों को जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, ये तुम्हारे लिए काबिले एहतराम है, इनको उफ भी ना कहना कि इनको कोई बात तुम्हारी जुबान की बुरी लग जाए। देखिए ये रिश्ता ऐसा होता है, माँ बाप के इस दिल में अल्लाह ताला ने नेचुरल बच्चों की मोहब्बत डाली हुई है, लेकिन बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं होती, नेचुरली बच्चों के दिल में नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बच्चों को कहा कि तुम माँ बाप के साथ ऐसे ना करना, वाला तनहर हुमा, और ना तुम उनको झिड़कना, अपने माँ बाप को झिड़की ना देना, डांटना नहीं, कोई ऐसे हकारत के कलिमात ना कहना, कोई ऐसी सख्त बात ना कहना, लाउड ना होना उनसे। तो कई दफा इंसान उफ तो नहीं कहता, लेकिन लाउड होता है, शाउट करता है, वो भी नहीं करना। वकुल्लहुमा, और कहना उनको कौलन, बात करीमा, इज्जत वाली। अब एक एक चीज गिनते जाएं कि क्या क्या आ रही है, 10 तो चीजें हैं, 10 कमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये जो एक एक चीज है ना, ये अलग अलग एक एक हुक्म आ रहा है, इसको भी आप देखें। एहसान उनके साथ करना, उनको उफ नहीं कहना, उनको झिड़कना नहीं है, उनको कितनी सारी बातें वालदैन के लिए आ रही। अब मुझे बताएं, जहां पे उफ कहने की इजाजत नहीं है, वहां पे ओल्ड होम में छोड़ के आने की इजाजत हो सकती है कि वहां पे फेंक आना? अल्लाह अकबर। तो क्योंकि इस बारे में पूछ बहुत सख्त है, यानी कुछ गुनाह ऐसी हैं कि उनकी सजा जो है ना, इंसान को इस दुनिया में भी मिलती है, आखरत में मिलनी ही है, लेकिन इंसान मरता नहीं है जब तक कि उनकी सजा ना भुगत ले इस दुनिया में। और उनमें एक वालदैन की नाफरमानी भी, और इसी को हम बहुत लाइटली लेते हैं। अक्सर देखा गया कि और लोगों के साथ फिर भी हंस खेल के बात करेंगे, हंस खेल के मिलेंगे दोस्तों के साथ, इनके साथ, लेकिन जहां माँ बाप आ जाएंगे वहां पे बिल्कुल ऐसा सर्द रवैया, और एक मुसीबत की तरह, और एक उनका हाल जानने की कोशिश ही ना करना। और आज ये चीज कयामत की निशानियों में से एक है, लेकिन आज ये चीज वाकई, ये निशानी भी पूरी हो गई है कि खाल खाल कोई ही मिलता है जो वालदेन को खुश करने वाला बच्चा हो, जो ऐसी औलाद हो, वरना ज्यादातर वालदेन रोते हुए ही नजर आते हैं। अब यहाँ पे आया बात कि कौलन करीमा उनको कहो, ऐसी बात जो इज्जत वाली, जो उनका दिल खुश कर दे। तुम खुद ढूंढो कि कैसी वो बात कैसी हो सकती है, यानी ऐसी बात करो जैसे बहुत तमीज के साथ, मुहज्जब अंदाज में, करीम होता है नोबल, नोबल बात करो। एक आदमी ने पूछा था, या रसूल्ला माँ बाप का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत है या तेरी जहन्नम है, यानी अगर खुश कर दिया तो जन्नत, अगर ना खुश किया तो जहन्नम। फरमाया ना, माँ के कदमों तले जन्नत है, तो अगर कदमों तले किसी के कोई चीज हो, खुद सोचें कोई चीज भी हो। अब पैर के नीचे मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा एक कीड़ा हो, अब आप चाहें तो उसको मसल दें, चाहें तो उसको छोड़ दें। इसी तरह तुम्हारी जन्नत जो है ना उसके पैर तले है, चाहे वो तुम्हारी जन्नत को क्रश कर दे और चाहे तुम्हारी जन्नत को तुम्हारे लिए रहने दे। ये है बात। एहसान दानिश उनकी एक किताब है जहाने दानिश, उसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि जब मेरी माँ बीमार हुई तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये तो मेरा सरमाया है, मैं इसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हें बिल्कुल इनको हाथ नहीं लगाने की जरूरत, इनकी सारी खिदमत मैं खुद करूंगा। और गरीब आदमी थे, ऑथर जाहिर है गुर्बत में जिंदगी गुजर गई थी उनकी, और घर में कुछ धोने वोने का इंतजाम वगैरह नहीं था। तो वो लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं माँ का बिस्तर उठाता, रोजाना 2 मील दूर नहर पे जाके धोता, हवा में उसको सुखाता और सुखाते हुए लेकर आता, और जब तक माँ जिंदा रही मैं उसकी चारपाई पे लग के खड़ा हो गया। देखिए आप सर, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीजें जिनका बदल नहीं ला सकता इंसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में अब्वा में पड़ाव डाला था और अपनी माँ की कब्र पे बैठ के घंटों रोए थे। सहाबा भी हैरान हुए कि किसकी कब्र है जिसके ऊपर इतना रो रहे हैं। एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरा बाप है मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसे ले लेता है, उसे पूछता भी नहीं है। तो बात एक समझ जाती है कि हाँ बेटा कमाई कर रहा है, बाप पूछ तो ले बेटे से। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बुलाओ उसको। उसको बुलाया, उसे पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उनको बड़ा दुख हुआ बाप को। तो उन्होंने कुछ अशआर कहे, जुबान से नहीं कहे, दिल ही दिल में शेर कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहा है वो आदमी आ रहा है उससे कहना पहले वो शेर सुनाओ जो तुम्हारी जुबान से तो निकले नहीं मगर तेरे अल्लाह ने सुन लिया, वो शेर सुनाओ। अच्छा वो आदमी आया जो बाप था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई वो शेर सुनाओ पहले जो तुम्हारी जुबान से भी नहीं निकले तुमने दिल में ही कहे। वो कहने लगा या रसूलल्लाह अल्लाह पे ईमान हमारा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है इन बातों की वजह से, क्या कहने उस रब के कि मैंने तो जुबान से भी नहीं कहे, जुबान पे आए ही नहीं और रब ने सुन लिया, सिर्फ ये तो मेरे जहन में ही थी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क्या कहा? कहने लगा मैंने कहा जो शेर थे उसने अरबी में सुनाए उनका तर्जुमा आपको, जाहिर है वो तो बात नहीं बन सकती मगर उनका तर्जुमा आपको मैं बताती हूँ कि उसने कहा कि मैं ये कह पा रहा था कि मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हम तो उसी दिन मर गए, फिर हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया, यानी हम अपने लिए नहीं फिर जीते थे, फिर तेरे लिए जीते थे, हम अपने लिए जीना छोड़ गए जिस दिन तू पैदा हुआ, हमने अपना सब कुछ तुझ पे लगा दिया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए कोल्हू के बैल की तरह गर्मी और सर्दी के थपेड़ों को सहते रहे, दुख दर्द झेलते रहे, तुझे तर खिलाने के लिए खुद खुश्क खाया, तुझे ठंडा पिलाने के लिए खुद गर्म पिया, तुझे सुलाने के लिए खुद जागे, तुझे सुख में रखने के लिए खुद दुख उठाए, तुझे ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खुद ढाल बन गए, तुझे धूप से बचाने के लिए हम खुद तेरा साया बन गए, चादर बन गए, जब कभी तू बीमार हुआ तो तुझसे ज्यादा हम बीमार हो गए, तेरी आह पे हमारी हाय निकलती, तेरे आंसू पे हमारी चीखें निकलती और हम दोनों माहिए बेआब की तरह तड़पते, पता नहीं तू मर ना जाए, यानी इस धड़का लगा रहता हमें कि कहीं तू तुझे कुछ हो ना जाए, बीमारी और मौत अपने वक्त पर आती है पर तेरा बीमार होना हमें सारी रात तड़पाता था, हमें ये लगता था तू नहीं हम बीमार हो गए, तू नहीं हमें दर्द उठाए, तू नहीं तो हम तड़प रहे हैं। और एक आंसुओं का सैलाब था जो थमता नहीं था और अंदर में गमों की घटा थी काली स्याह जो छटने का नाम नहीं लेती, इसी तरह हम चक्की में पिसे और कोल्हू के बैल की तरह हम जुते चले और थके और बिटे और पिसे, और क्या हुआ हमारी जवानी का रस चढ़ता चला गया और तेरे बचपन में जाके वो भरता चला गया। यानी जैसे समझने की एक एक कतरा है, वो इधर से नुचड़ रहा है और उधर उसको मिल रहा है। इसने अपनी जवानी गुलाई तो वो बच्चा परवान चढ़ रहा है, अरे वो ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को नचोड़ के उसको दे रहे हैं कि वो अपनी जवानी पा सके। हमारे रंग रूप बिगड़ते चले गए, तेरा रंग रूप निखरता चला गया, हमसे जवानी का रस निकलकर तेरी कमजोर हड्डियों में उतरा और हमसे बुढ़ापे ने रंग छीन लिया, जवानी ने तुझे रूप बख्श दिया। बुढ़ापे ने हमारे पत्ते झाड़ के रख दिए और जवानी ने तुझे बराबर कर दिया, सब्ज़ सरसब्ज कर दिया, तू लहलहाने लगा और हम खिजां के थपेड़ों का शिकार हो गए, तू सीधा हो गया और हम रुकू में चले गए। देखें बच्चा सीधा होता जाता है, खड़ा होता जाता है, यानी वो जवान हो रहा है और वो माँ बाप क्या हो रहे हैं, रुकू में जाते जा रहे हैं, वो झुकती जा रही है उनकी कमर। तू ताकत में आया, हमने लाठियां पकड़ ली, अब हमें उम्मीद लग गई, जैसे हम उंगली पकड़ के चले, जैसे हमने इसके पेशाब पखाने धोए, जैसे हमने इसको लोरियां दी, जैसे हम इसके लिए रोए तड़पे जागे, और कुछ नहीं तो हमारा हाल पूछ लेगा। यानी और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम इतना तो करेगा, हमारा हाल पूछ लेगा, हमारा थोड़ा बहुत तो ख्याल रखेगा। लेकिन एकदम तेरे तेवर बदल गए, तेरा मुंह चढ़ गया, तू दोस्त को करीब करने लगा, हमें धक्के देने लगा, हमें गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ा, दोस्तों की महफिल में जाके रौनक बना। हमने कभी पुकारा तो तेरे तेवर बदल गए, तूने बड़े सख्त आवाज में कहा क्या सर खाते हो, तो हम दोनों बैठे दोनों परेशान। क्या हुआ, हम परेशान के क्या हुआ, मैं इसे पालता रहा, नहीं, गलती लग गई, इसने मुझे पाला है, मैंने नहीं इसे पाला, वरना कुत्ता भी एहसान मान रहा है। मैं अपनी 40 साला जिंदगी को झुठला रहा हूं, मैंने अपने बेटे को नहीं पाला, मेरे बेटे ने मुझे पाला, जबी तो इसका तेवर बदला, इसका मुंह चढ़ा। अच्छा मेरा बेटा, तू बेटा नहीं बना तो पड़ोसी तो बन जाता, पड़ोसी भी ना बन सका। ये वो दर्दनाक दास्तान है जो अल्फाज के रूप में जब इसकी जुबान पर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से तो आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अल्लाह अकबर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल रोने की वजह से आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को पकड़ा और फरमाया कि जा, तू और तेरा माल तेरे बाप उठ के चला जा मेरी मजलिस से। कैसा दर्द था इस उसकी उसके इन शेरों में। और सोचे कि ये कभी नसर में बताया, अगर ये शेरों के अंदर हो तो क्या जबरदस्त बात होगी जो उसने कही। और अब पता है क्या, एक हदीस में भी आता है ना कि जब लोग हुकूमत का पैसा हड़प कर लेंगे, जब लोग अमानत में खयानतें करेंगे, माले गनीमत समझ लेंगे उसको, जब लोग जकात से इनकार कर देंगे, जब दीन से हट के दुनिया का इल्म हासिल करेंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, बीवियों के फरमा बरदार होंगे, दोस्तों से अच्छी तरह मिलेंगे, बाप को देख के मुंह फेर लेंगे, रास्ता बदल लेंगे, कहीं कोई काम ना कह दे, और भी बहुत सारी उसमें बातें हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, मस्जिदों में लड़ाइयां होने लगी, ये मर्द रेशम पहनने लगेंगे, इस तरह करेंगे, तो उस वक्त के बारे में फरमाया, 15 बातें बताई गई, और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मेरी उम्मत में ये चीजें आ जाएंगी ना, फिर इंतजार करना सुर्ख आंधियों का, जलजलों का, जमीन में धस जाने का, जैसे तस्बीह का धागा टूट जाता है उसके दाने बिखरने लगते, इस तरह आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, जलजल एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक, जैसे दाने गिरते हैं ना एक के बाद, इस तरह होने लगे जब ये बातें ट्रू होंगी। और इनमें 2 बातें मैंने आपको बताई कि लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे, दोस्तों से अच्छी तरह मिलेंगे, बाप को देख के मुंह कर लेंगे, यानी ये हाल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे वक्त में तुम, यानी जब तुम्हारे माँ बाप ऐसी उम्र को पहुंच जाए, तो तुमने ऐसे रवैये नहीं रखने कि उनको बुढ़ापे में पहुंच के अपनी जुबान से तकलीफ दो, तुम्हारी जुबान खुले तो उनके दिल छलनी हो जाए। वालदैन को यहाँ पे ऐसे पोट्रे नहीं किया गया जैसे कोई कांच की गुड़िया सी होती है, एक आंच के दिल है इनके, इसलिए कि वो वालदेन कहते हैं हमने तो इसको पैदा किया, इसको पाला, इसको आज ये उठ के हमें ही कहता है आपको क्या समझ है, आपको क्या पता, आप आराम से बैठे। आज कयामत की निशानियां वाकई पूरी हो गई कि आज वालदेन बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ के बच्चे वालदेन को खुश करने की। वालदेन कहते हैं हमारे मुंह से ना कोई ऐसी बात निकल जाए कि भाई इन इनको गुस्सा ना आ जाए। आज आज बच्चों ने क्या कौले करीम कहना है, वालदेन कौले करीम कहने की कोशिशों में लगे रहते हैं।